हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अपने पैर से चिपकी हुई डरी सहमी काव्या को देखकर शिविका झुककर उसे गोद में उठा लिया और अपने गले से लगाते हुए बोली, भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है बेटा, क्या बोल रही हो तुम? और घर में कोई भी भूत कैसे आएगा? काव्या उसी तरह शिविका के गले लगी हुई बोली, नहीं मम्मा, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने देखा उसे वहाँ पर। वो किचन से बाहर निकल कर आई, बिल्कुल भूतनी चुड़ैल लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा भी अजीब सा, डरावना। डर की वजह से काव्या ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था और वो शिविका से दूर होने को तैयार नहीं थी। शिविका ने उसका चेहरा थोड़ा सा दूर करते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, चलो मैं देखती हूँ कौन सी चुड़ैल आ गई हमारे घर। शिविका और काव्या की बात सुनकर पीछे खड़े ऋषभ ने कहा, अरे है ना वो चुड़ैल हर्षिता, पक्का उसे देखकर ही डर गई होगी मेरी प्रिंसेस। ऋषभ की बात पर शिविका ने उसे घूर कर देखा। वो जानती थी कि ऋषभ हर्षिता को पसंद नहीं करता, इसलिए ही उसके बारे में ये सब बोल रहा है। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा बोलने से काव्या के मन में भी हर्षिता को लेकर ऐसी कोई इमेज बने। शिविका के घूर कर देखने की वजह से ऋषभ चुप हो गया। काव्या को गोद में लेकर शिविका घर के अंदर आई, तभी उसे ज्योति भी दरवाजे के पास ही नजर आई। वो शायद काव्या के पीछे ही घर से बाहर आने वाली थी। काव्या को शिविका की गोद में देखकर ज्योति ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे मैडम जी, अच्छा हुआ आप घर आ गई हैं। ये काव्या बेबी तो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी और बेवजह ही डरकर बाहर भाग गई। ज्योति की बात सुनकर शिविका अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोली, क्या मतलब बेवजह? अगर इतनी छोटी बच्ची किसी को देखकर डर ही गई है तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी। बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब? शिविका का सवाल सुनकर ज्योति ने पीछे मुड़कर देखा। शिविका और ऋषभ ने भी उसकी नज़रों का पीछा किया। काव्या एक बार उधर देखकर दोबारा शिविका की गर्दन से चिपक गई। काव्या के ऐसे डरकर चिपकने की वजह से शिविका ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। पीछे खड़े ऋषभ ने भी काव्या का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, बेबी भूत वूत कुछ नहीं होता है, तुम डरो मत। तभी शिविका को सामने से आती हुई एक लड़की नजर आई। उसका चेहरा सच में बहुत अजीब लग रहा था। देखकर एक बार को तो शिविका भी उसे पहचान नहीं पाई और थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन फिर उसे जल्दी ही समझ आया कि उस लड़की ने चेहरे पर फेस पैक लगाया हुआ है जो कि आधा सूख गया है और आधा गीला है। इस वजह से उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था और उसके बाल भी खुले हुए थे। उसे इस तरह देखकर घबराते हुए शिविका ने भी अपने चेस्ट पर हाथ रख लिया और फिर थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए बोली, ये सब क्या है हर्षिता, और क्या हाल बना रखा है अपना? पीछे खड़े ऋषभ ने धीमी आवाज में बोला, ये तो सच में चुड़ैल ही लग रही है। हर्षिता ने अनजान बनते हुए पूछा, कौन सा हाल? उसके इस सवाल पर शिविका ने उसके चेहरे की तरफ इशारा किया। वो एकदम से बोली, अच्छा ये तो मेरा इम्पोर्टेड ग्लोइंग मड फेस पैक है। शिविका ने थोड़ी नाराजगी से कहा, फेस पैक हो या आई पैक, लेकिन इस तरह से लगाकर पूरे घर में क्यों घूम रही हो? तुमने मेरी बच्ची को डरा दिया। हर्षिता ने उससे कहा, अरे लेकिन इसमें डरने वाली कौन सी बात है, और वैसे दी आप कभी फेस पैक नहीं लगाती हो क्या? शिविका ने उसे अपना चेहरा देखने का इशारा करते हुए कहा, नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं, लेकिन तुम बताओ अगर तुमने फेस पैक लगाया भी है तो तुम्हें अपने रूम में बैठना चाहिए ना, इस तरह से यहाँ वहाँ क्यों टहल रही हो? अब काव्या इतनी छोटी है, उसे क्या पता इस बारे में, और बाकी सबको भी आदत नहीं है तो सब डर ही जाएंगे। देखो तुम्हारा फेस भी कितना अजीब सा लग रहा है। ऋषभ ने उसे ताना मारते हुए कहा, अजीब नहीं डरावना लग रहा है, और काव्या क्या कोई भी डर जाएगा इस भूतनी से? ऋषभ की इस बात पर हर्षिता ने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, दी देखो ये ऋषभ भाई मुझे हमेशा ऐसे बोलते हैं। उसकी इस बात पर शिविका ने ऋषभ की तरफ घूर कर देखा। उसके इस तरह देखने पर ऋषभ ने कहा, अरे दी मुझे क्यों इस तरह से घूर रही हो, सच ही तो बोला मैंने। ऋषभ की इस बात पर हर्षिता गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर तक किसी की आवाज़ नहीं आई, तब काव्या ने पूछा, मम्मी वो चली गई क्या, मुझे उसका फेस नहीं देखना? शिविका काव्या का चेहरा अपने चेहरे के सामने करके उसके एक गाल पर अपना हाथ रखती हुई बोली, बेबी वो कोई भूत नहीं है, वो तुम्हारी हर्षिता आंटी है, और उसने चेहरे पर फेस पैक लगाया था, इस वजह से ही वो ऐसी दिख रही थी। और मेरी बेटी तो कितनी स्ट्रांग है ना, वो इतनी आसानी से भला कैसे डर गई? काव्या ने मासूमियत से पूछा, अच्छा तो इसका मतलब वो उनका रियल फेस नहीं था और वो चुड़ैल भी नहीं है? शिविका ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया, नहीं बेटी, वो कोई चुड़ैल नहीं है। अभी वो अपना चेहरा धोकर आएगी, तब तुम फिर से उन्हें देख लेना। अभी थोड़ी देर पहले ही साथ में जो बोला था वो याद आते ही काव्या ने फिर सवाल किया, नहीं मुझे नहीं देखना, ऋषभ मामा तो बोल रहे हैं कि वो चुड़ैल हैं। शिविका ने गुस्से से ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम्हारे ऋषभ मामा तो कुछ भी बोलते हैं और वो बस मजाक कर रहे थे, है ना ऋषभ? शिविका को गुस्से में देखकर ऋषभ भी हंसते हुए बोला, हाँ हाँ मजाक कर रहा था मैं तो, लेकिन काव्या तो उल्लू बन गई। हाँ हाँ, ऋषभ के हंसने पर काव्या ने पहले तो थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन फिर वो पूरी बात समझ गई। थोड़ी देर के बाद जब हर्षिता कमरे में आई तो शिविका ने उसे काव्या से मिलाया। काव्या भी हर्षिता के साथ बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल नहीं थी, इसलिए वो अभी भी शिविका और ऋषभ के बीच ही शिविका से चिपक कर बैठी हुई थी। हर्षिता ने भी काव्या से बस हाय हेलो किया और वहाँ से चली गई। करण का घर। करण और समर एक साथ बैठे हुए थे, तभी समर की माँ ने उन दोनों को खाने के लिए आवाज लगाई। करण ज्यादातर अपने रूम में ही खाना खाता था। खाने की टेबल पर भी किसी न किसी बात को लेकर उसके पापा और उसकी सौतेली माँ के बीच लड़ाई जरूर होती थी। उन सब लड़ाइयों के बीच करण के गले से तो खाना नीचे नहीं उतर पाता था, लेकिन उसके पापा तानों और लड़ाई झगड़ों के बीच में भी आराम से खाना खा लेते थे। रोज की ही तरह करण का आज भी वहाँ सबके साथ जाकर खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों जब समर ने आज उसे अपने साथ चलने को कहा तो करण ने भी ज्यादा मना नहीं किया और उसके साथ वहाँ से निकलकर घर के डाइनिंग एरिया की तरफ आ गया। वहाँ पर बाकी घरों की तरह बहुत बड़ी और महंगी डाइनिंग टेबल तो नहीं थी, लेकिन एक छोटी राउंड टेबल थी जिस पर चार लोगों के बैठने के लिए चार कुर्सियाँ लगी हुई थीं। वो टेबल और कुर्सियाँ आपस में मैच भी नहीं हो रही थीं। इससे साफ पता चल रहा था कि किस तरह उस मिडिल क्लास घर के लोगों ने अलग अलग कुर्सी और मेज को जोड़कर डाइनिंग टेबल सेट किया था। करण वहाँ पर आकर बैठ गया। उसके पिता पहले से ही एक कुर्सी पर बैठे हुए थे खाने के इंतजार में। करण ने बेबसी से एक नज़र उनकी तरफ देखी और फिर उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन समर हमेशा की तरह ही अपनी माँ की हेल्प करने के लिए किचन में चला गया और कुछ खाने के बर्तन लाकर उस टेबल पर रखने लगा। फिर सारा सामान रखने के बाद समर भी करण के साथ बैठ गया। खाने के लिए बैठते ही करण और समर दोनों ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बस आज वो दोनों शांति से खाना खा लें और उनके माँ पापा के बीच लड़ाई ना हो।
शायद भगवान ने उनकी सुन ली थी, क्योंकि आज उनकी माँ ने बहुत ही सहूलियत से बात की, सभी को अच्छे से खाने के लिए पूछा और खाना सर्व किया और फिर खुद भी उन सबके साथ बैठकर खाने लगी। हाँ, लड़ाई न होने की एक वजह ये भी थी शायद कि उन दोनों ने अब तक आपस में कोई बात ही नहीं की थी। उन दोनों भाइयों ने खाना खाते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए अपना खाना खत्म करने ही वाले थे कि तभी समर की माँ ने उसके पापा को हल्के से कोहनी मारकर कुछ इशारा किया। अपनी पत्नी के इशारे का मतलब समझते हुए करण के पापा ने हल्के से अपना सिर हिलाया और एकदम से बोले, करण बेटा, तुम्हें काम करते हुए एक महीना तो हो गया है ना? करण ने अपना खाना रोककर शक भरी नज़रों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ एक महीना हो तो गया है, अभी दो दिन पहले ही, लेकिन आज आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? करण की बात सुनकर उसकी सौतेरी माँ अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाई और एकदम खुश होते हुए बोली, अच्छा तो फिर तनख्वाह भी मिल गई होगी। अब करण को उन दोनों की बात का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया था। क्यों वो दोनों इस तरह अचानक से उसके काम और तनख्वाह के बारे में पूछ रहे हैं? क्योंकि हमेशा की तरह उन्हें बस उसकी सैलरी और पैसों से मतलब है। समर अपनी माँ के ऐसे बर्ताव पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और उसने धीमी आवाज में कहा, मम्मी क्या है, आप इस तरह से क्यों पूछ रही हैं? भाई तो वैसे भी सारे पैसे घर पर ही खर्च करते हैं। समर की बात पर उसकी माँ उसे डांट कर चुप करवाते हुए बोली, तू चुप कर समर, चुपचाप अपना खाना खा, ये बड़ों की बीच की बातें हैं, तुझे वैसे भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। समर अपनी बात काटते हुए बोला, मम्मी मैं इतना भी छोटा नहीं। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही करण ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर हल्के से नहीं में अपना सिर हिलाते हुए बोला, रहने दो समर। उसकी बात मानकर समर चुप हो गया और समझदारी से आगे कुछ भी नहीं बोला। लेकिन करण अपने माता पिता की लालची नजरों की तरफ देखते हुए बोला, समर को तो बच्चा बोल देते हैं आप दोनों, लेकिन पता है वो आप दोनों से कहीं ज्यादा समझदार और बड़ा है। इसके अलावा रही बात आप दोनों के सवाल की, तो भले ही मुझे अभी एक महीना हो गया है ज्वाइन किए हुए, लेकिन अभी सैलरी नहीं मिली है। वो सभी के साथ 1 तारीख के बाद ही मिलेगी, ऐसा ऑफिस का रूल है। इतना बोलकर करण ने एक गहरी सांस ली और अपना खाना पूरा खत्म किए बिना ही अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। करण की सौतेली माँ ने अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहा, अरे तो कोई बात नहीं ना, 1 तारीख के बाद मिलेगी तो भी ठीक है, लेकिन तुम बैठकर अपना खाना तो खत्म कर लो करण। करण मुड़कर वहाँ से जाते हुए बोला, नहीं बस पेट भर गया मेरा। इतना बोलकर करण भी अपने रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही समर भी उठकर खड़ा हो गया, लेकिन वहाँ से जाने से पहले उसने अपने माँ पापा की तरफ गुस्से से देखा और फिर करण का नाम लेकर आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे चला गया। क्रमशः